الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آپ میں سے کسی نے درود شریف پڑھا کسی کا منہ ایسے ہے کسی کا منہ ایسے بھائی درود شریف پڑھنا ہے نا سب نے ٹھیک ہے خالی گملے کو تھوڑی پڑھنا ہے پچھلی کلاس میں یاد ہے کیا کہا تھا بالکل شروع میں کہ اس کلاس کے اندر ایک تو وضو میں آنا ہے ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے کہ وضو کی حالت میں بیٹھیں اگرچہ کہ یہ قرآن نہیں ہے ایون دین وضو کی حالت میں اور دوسری یہ کہ ہم اس کے اندر درود شریف پڑھتے رہیں ایون ڈیورنگ دا کلاس بھی پڑھتے رہیں شروع میں بھی پڑھیں آخر میں بھی پڑھیں اور بیچ میں بھی پڑھتے رہیں جب بھی یاد آئے ٹھیک ہے تو کم از کم اسٹارٹ تو ہم درود شریف سے کریں نا ٹھیک ہے تو درود شریف سب پڑھ لیں جنہوں نے اب تک نہیں پڑھا ہے اور یہ آن لائن کلاسز والوں سے بھی کہا جا رہا ہے چلیں تو یہ ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس ہے اس کے اندر ہم نے اب تک کیا کیا ہے سب سے پہلی کلاس میں ہم نے دا لینڈ آف عربیہ کے بارے میں بات کری تھی ٹھیک ہے جو عربین پیننسولا کہلاتا ہے اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں پیننسولا کو کسی کو پتہ ہے جزیرہ نما یعنی یہ ایکچولی جزیرہ نہیں ہے جزیرہ مینز آئیلینڈ جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے یہ ہم کرنا ٹھیک ہے تو یہ ایکچولی جزیرہ نہیں ہے لیکن یہ جزیرہ کے جیسا ہے تین سائڈ سے پانی ہے ایک سائڈ سے یہ لینڈ سے کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے تو لینڈ آف عربیہ کے بارے میں بات کری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جگہ پسند کری دنیا میں وہ سب سے آئیڈیل اور سینٹر لوکیشن تھی ٹھیک ہے سب سے امپورٹنٹ جگہ بھی یہی ہے دنیا کے اندر اچھا پچھلی کلاس کے اندر پھر ہم نے جو نیکسٹ ٹاپک تھا وہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آنے سے پہلے کی کیا حالات تھے کہ یہ دنیا انتہائی برائی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی بہت زیادہ گناہ اور ظلم اور گندی گندی باتیں اس طرح کی انہوں نے لوگوں نے شروع کر دی تھی مختلف ریلیجنز کے بارے میں بات کری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر بڑے بڑے ریلیجنز کون سے تھے عیسائیت یہود یہودی تھے اور ہندوز تھے انڈیا کے ایریا کے اندر اور بدھسٹ تھے جو کہ انڈیا سے نارتھ میں جو چائنا کا ایریا کہلاتا ہے نیپال ہو گیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا علاقہ بھی یہ تائیوان تھائی لینڈ یہ سارا کا سارا بدھسٹ ہے ابھی بھی تو بدھزم تھا اور اس کے علاوہ فائر ورشپرز تھے ماجینس یا مجوسی جن کو کہتے ہیں اور عرب جو لوگ تھے خود وہ کتنے زیادہ برائیوں کے اندر مبتلا ہو چکے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو مار دیا کرتے تھے اور کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکتا تھا کہ بھائی کیوں مار دیا لمبی لمبی جنگیں ہوتی رہتی تھیں ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جنگیں کرتے رہتے تھے اور وہ کئی سو سال تک ہی جنگیں لڑتے رہتے تھے ہنڈریڈز آف ایئرس تک ان کی وارس چلتی رہتی تھی خالی ٹرائبس کے درمیان اور یہ ویمنز رائٹس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ عورتوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں عورتیں بھی انسان ہوتی ہیں عورتوں کو انسان کی طرح سے اکثر ٹرائبز جو ہیں وہ بالکل ٹریٹ ہی نہیں کرتے تھے اور سب سے زیادہ جو بری چیز ظلم کے معنیوں میں جو ہمیں نظر آتی ہے ظلم وہ کیا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جب وہ پیدا ہوتی تھی نا تو تھوڑے دنوں کے بعد یہ اپنی ہی بیٹیوں کو جا کر کے زمین میں قبر کھود کر کے اس کے اندر ڈال دیتے تھے زندہ اور اس کے اوپر پھر مٹی ڈال دیتے تھے اور اتنی ساری مٹی ڈالتے تھے کہ نیچے بچی جو ہے وہ دم گھٹ کر کے مر جاتی تھی کیونکہ آکسیجن آنی بند ہو جائے گی اب کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کیا حالت ہوتی ہوگی اس بچے کی نا تو یہ لوگ ایسے جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو مار دیتے تھے ایک صحابی کا آتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا کلمہ شہادت پڑھ لیا لیکن اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ جو کہ معاف ہو ہی نہیں سکتا تو میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ میرے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا कि तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि जो तुम समझते हो कि अल्लाह ताला नहीं माफ करेंगे, हालांकि वेटिंग रूम में लोग हैं, वेटिंग रूम फीचर का मसला कैसे करेंगे इसमें? ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसका तुम्हारा ख्याल है कि अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ताला ने 70 बेटियां दी थी, 70 बेटियां, क्योंकि उस जमाने में लोग शादियां भी बहुत करते थे, 10-10, 20-20 लोगों की बीवियां होती थी, इतनी सारी शादियां किया करते थे लोग। तो अब हर बीवी से अगर उनको इतनी सारी बेटियां पैदा हो रही हैं, 10 बेटी किसी से पैदा हो गई, किसी से 5, किसी से 6, तो इस तरह से 70 बेटियां भी अल्लाह ताला ने उनको दी। हो सकता है उनका बेटा कोई ना हो और सारी बेटियां हुई। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी 70 बेटियों को, 70 बेटियों को अपने हाथों से दफन किया है, जिंदा दफन किया है, अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया। तो इस वजह से वो कह रहे थे कि ये तो इतना बड़ा मैंने गुनाह किया है। खुद उनको अंदाजा हो रहा था, फिक्र हो रही थी कि वाकई मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन इंदल इस्लामा यहदिमु माकलबहु, कि जो कुछ पहले इंसान ने गुनाह किया होता है, जब इंसान मुसलमान हो जाता है, तौबा कर लेता है शिर्क से, तो फिर अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो उनके गुनाह को भी अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, लेकिन उसके बाद वो ऐसे बन गए कि चूटी भी मारने से पैर, यानी उसके भी ख्याल करने लगते थे ये लोग कि उनके पैर के नीचे कोई चूटी आकर के ना मर जाए। कहां तो अपनी बेटियों को मार रहे होते थे और कहां ऐसे बन गए कि चूटी के भी ख्याल करना शुरू हो गए कि उनकी वजह से कोई चूटी भी ऐसी ना मर जाए, खामखा किसी वजह के बगैर। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हालत थी दुनिया की नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले। फिर हमने अगली जो बात करनी थी वो ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने अरबों को क्यों चूज किया अपने प्रॉफिट को भेजने के लिए, अरबों को क्यों चूज किया। नबी अल्लाह ताला जो है वो इंडिया में भी अपने प्रॉफिट को भेज सकते थे, अल्लाह ताला चाइना में भी भेज सकते थे अपने प्रॉफिट को, रशिया में भी भेज सकते थे, यूरोप में भी भेज सकते थे, अफ्रीका में भी भेज सकते थे। ये सारी जो कंट्रीज थे उस वक्त के, ये सारे जगह जो थी वो लोग रहते थे यहाँ पर, तो अपने प्रॉफिट को अरेबिया में। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन पूछूंगा तो आप जवाब दिया, ठीक है, क्वेश्चन करना हो तो वो और बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं आपसे क्वेश्चन करना रहूं और आप जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अरेबिया में क्यों उनको भेजा, क्योंकि अरब जो थे ना ये बाकी दुनिया के लोगों से काफी डिफरेंट लोग थे। ठीक है, बाकी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा वो लोग जो थे ना, लाइक कह सकते हैं कि उनकी सिविलाइजेशंस जो थी, उनका जो तमद्दुन था, रहने का जो तरीका था ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका था, बहुत ज्यादा वो एडवांस हो चुके थे, और उन्होंने साइंस के अंदर भी बहुत तरक्की की थी, लिटरेचर के, और लिटरेचर तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजों में ना उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी हुई थी। ठीक है, बड़ी बड़ी वो लोग बिल्डिंग्स बनाते थे, और उन्होंने बड़े डैम्स बनाए हुए थे, यानी कंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की करी थी, और उनकी जो जो रहने सहने का तरीका था वो बहुत ज्यादा ना, उनके पास माल और दौलत वगैरह बहुत ज्यादा होती थी, तो काफी सोफिस्टिकेटेड किस्म का उनका लाइफ स्टाइल था। और साथ साथ जो है वो ये भी कहते थे कि भाई हम तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो यानी बड़े एडवांस कल्चर किस्म के लोग हैं, जैसे इंडिया के लोग खासतौर पर, उनकी सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस थी। ठीक है, तो जो उसके मुकाबले में जो अरब्स थे ना, अरब्स का मामला ये था कि ये बहुत ज्यादा सिंपल किस्म के लोग थे। ठीक है, ये डेजर्ट के करीब रहते थे या डेजर्ट के अंदर रहते थे ये लोग, और इनकी जो सोचने का अंदाज था ना, ये बहुत सिंपल था, प्योर एंड सिंपल। जो चीज इनको समझ में नहीं आती थी ना, ये उसके दुश्मन हो जाते थे, जो बात इनको समझ में नहीं आती थी। तो ऐसा नहीं करते थे कि ये कहते थे कि भाई हम ठीक है, हमारे समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम who cares, हम फिर भी मान लेते हैं बात को, ऐसा नहीं ये करते थे। बल्कि ये जिस बात को गलत समझते थे, सही नहीं समझते थे ना, तो उसके ये एनिमीज बन जाते थे, दुश्मन, खुल करके दुश्मनी करते थे, उसके खिलाफ लड़ाई करते थे उस चीज के खिलाफ, ठीक है। लेकिन जब उनको वो बात समझ में आ जाती थी कि हाँ ये बात सच्ची है, ये बात सही है, तो फिर ना ये मान लेते थे उस बात, और मानने के बाद जो है ना वो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, हत्ता कि अपनी जान लगा देते थे उसको सपोर्ट करने के, ठीक है ना। एक तो ये बहुत बड़ी इनकी रीजन थी कि सिंपल लोग थे ये, इनमें से झूठे भी थे लेकिन वो कम झूठे थे, कम लोग झूठे होते थे, ठीक है। हिपोक्रेट जिनको कहते हैं ना, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, ठीक है, जिसको मुनाफिक भी कहते हैं उर्दू में और अरबी में, मुनाफिक, तो मुनाफिक इनमें बहुत कम लोग थे, ज्यादातर लोग जो थे ना बिल्कुल जिसको कहते हैं खरा और सच्चा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सही है। फिर उसके बाद इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बहादुरी भी थी, बहुत बहादुर थे, जैसे कि अभी कहा ना कि ये 100 ईयर्स तक लड़ाइयां करते रहते थे, ठीक है, तो वो लड़ाइयां इतनी लंबी लंबी क्यों करते थे, बिकॉज इनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती थी, ये बस लड़ जाएंगे मर जाएंगे, इस तरह का इनका एटीट्यूड था, ठीक है। तो ये डरते नहीं थे किसी से, उमूमी तौर पर बात हो रही है, जाहिर एक्सेप्शन तो होती है हर जगह पर कि कभी कोई डरने वाला भी होता है लोगों में, लेकिन आम तौर पर ना ये अरब्स डरते नहीं थे, बहुत ज्यादा बहादुर किस्म के लोग, और फिर इनको लड़ना भी बहुत जबरदस्त आता था, बड़े एक्सपर्ट हॉर्समैन होते थे। अरेबियन हॉर्स जो है वो आज भी मशहूर है कि सारी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन हॉर्सेज होते हैं उनको अरबी घोड़े कहा जाता है, अरेबियन हॉर्सेज, ठीक है। ये इवन अमेरिका में भी आप चले जाए ना तो वहां पे जो वो जो इनके वो होते हैं जहाँ पे हॉर्स रेसिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो वहां पर भी अगर आप जाकर के देखें तो सबसे जो बेस्ट हॉर्सेज नजर आएंगे ना वो अरब के हॉर्सेज होंगे, अरेबियन हॉर्सेज, ठीक है। तो ये भी बहुत एक्सपर्ट हॉर्समैन भी होते थे। तो इनके अंदर इस तरह की क्वालिटीज थी, तो बहरहाल लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन क्वालिटीज की वजह से ना अपने नबी को इन अरब्स के दरमियान भेजा। अच्छा, अब इसके अलावा और किसी के जहन में अगर कोई बात आए कि अरब्स को चूज करने की कोई और वजह भी बताएं तो आप क्या बताएंगे? क्या बोल, उधर ज्यादा नबी नहीं आए? नहीं, ये तो बात नहीं है कि नंबर्स को बैलेंस करने के लिए उधर ज्यादा आ गए थे इधर कम आए थे तो एक और भेज दो, नहीं ये वजह तो नहीं थी जी, क्योंकि उधर मक्का मुकर्रमा था, उधर अल्लाह ताला का घर था जी, यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपना घर भी रखा था, ठीक है। यानी जो सबसे पहला हाउस इस दुनिया के अंदर बना अल्लाह ताला की इबादत के लिए वो कौन सा घर था? काबतुल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं, मैंने आयत भी लिखी थी आप लोगों के लिए, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास, कि जो पहला घर जिसको कि अल्लाह ताला ने बनाया था लोगों के लिए, लोगों की इबादत करने के लिए, वो क्या था? लिल्लज़ी बिबक्का था मुबारक, वो बक्का के अंदर था। बक्का क्या है? ये मक्का का एक नाम है, मक्का मुकरमा का एक नाम बक्का भी है, ठीक है। उम्मुल कुरा ये भी एक मक्का मुकरमा का नाम है, उसी तरह से बक्का भी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो पहला घर बनाया इबादत के लिए वो मक्का मुकर्रमा के अंदर बनाया, इसकी थोड़ी और डिटेल भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, और क्या लिखा है यहाँ पर कि बनी इसराइल नबियों की इज्जत नहीं करते थे, इस वजह से इनको यहाँ पर भेजा नबी अलैहि सलाम को, नहीं बेइज्जती तो इन्होंने भी बहुत करने की कोशिश करी थी, ठीक है, तो बनी इसराइल ने भी करी थी, इन्होंने भी बहुत करी थी, तो ये तो बात नहीं बनती। उलमा ने ये एक रीजन नहीं लिखी कि क्योंकि वो बेइज्जती करते थे इस वजह से अपने नबी को उधर नहीं भेजा। अच्छा, तो एक हो गया कि अल्लाह ताला का जो पहला घर था इबादत वाला वो इसी एरिया के अंदर था, और जी अच्छी अरबी बोलने वाले थे और बाकी लोग गंदी अरबी बोलते थे, वैसे पहुंच तो गए ये सबसे बड़े रीजन के ऊपर, अल्लाह ताला ने इन लोगों को अरबी जुबान अता फरमाई थी, ठीक है ना। बाकी नहीं, नहीं कर बाकी जो दुनिया के लोग थे उनको अरबी नहीं आती थी, बिकॉज वो अरब्स नहीं थे, ठीक है, वो कोई 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 संस्कृत बोलता था, कोई फारसी बोलता था, कोई कुछ बोलता था, हाँ वो तो लैंड की बात हो चुकी है ना, फिजिकली वो लोग सेंटर में थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि और कोई वजह, कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपने प्रॉफिट को भेजा, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह, वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि इन लोगों की जुबान जो थी ना वो अरबी जुबान थी, ठीक है। तो अरबी जुबान जो है ना, ये एक ऐसी जुबान अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाई है, अरबी जुबान बनाई है अल्लाह ताला ने बनाई है। जुबान बनती कैसे है? जुबान की ये जो लैंग्वेज हम जो हम बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, तो हाउ डिड इट कम अबाउट, लैंग्वेज बनी कैसे? जी आप बताओ। लोग बनाते हैं, ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला ने कैसे बनाई? लोग बनाते हैं तो कौन बनाता है? अल्लाह। अच्छा कोई और? जी कुरान तो बाद में आया ना, अरबी जुबान तो पहले से थी, लोगों को पहले से अरबी बोलनी आती थी। पीपल इंटरैक्शन, देयर लैंग्वेज वॉज अरबिक। चले माशाल्लाह, उन्होंने जवाब सही दिया था यहाँ पर। हाँ, होता यह है कि लोग ना जो उनके जहन में कोई बात आती है ना, ठीक है ना, कि फलाना फलानी चीज उनको किसी को बतानी है, ठीक है, किसी को कहना है कि भाई आप जो है वो पंखा चला दें, मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है। अब ये जो पंखा चला दें मुझे गर्मी लग रही है, राइट, ये अब वो कहेंगे कैसे अगले बंदे को, ठीक है। तो अगले बंदे को कहने के लिए, यानी आगे जो एक बंदा है जिससे कह रहे हैं कि भाई आप ये काम कर दीजिए, तो अब ये कहेंगे कैसे? तो इसके लिए ना लोग जो है वो कुछ ना कुछ जुबान से ना साउंड्स निकालते हैं, साउंड्स, ठीक है। वो जो साउंड्स निकालते हैं ना, तो उस साउंड के साथ वो साथ साथ जो है वो कुछ इशारे भी करते हैं। जैसे कि मैं आपसे अगर कहूंगा, अगर यहाँ पे पंखा होता है, इस कमरे में है नहीं, लेकिन अगर होता तो मैं कहता कि वो जो, ठीक है, ऐसे घुमाओ, सही है, और साथ साथ मुंह से भी कुछ घुमाओ ऐसे ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। तो अब जो अगला बंदा सुन रहा है ना आपकी इस बात को, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने ये जो साउंड सुना ना आपकी जुबान से, ठीक है, और साथ साथ उसने आपके हाथ से इशारा भी देखा, तो उसने क्या किया कि उसने ये बात समझ ली कि ये जो घुमाने वाला काम करने को मुझे कह रहे हैं ना, तो इसके लिए जो आवाज है वो है घुमाओ, घुमाओ वाली आवाज जो है ना, ये जो आवाज आ रही है घुमाओ, तो इसका ताल्लुक जो है वो ऐसे ऐसे वाले एक्शन के साथ है। अब ये चीज जो है ना, ये एक वर्ड बन गया, उस लैंग्वेज का एक वर्ड बन गया घुमाओ, ठीक है ना। उसी तरीके से कोई और काम करना था, खाना पकाओ या खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, भूख लगी है, तो वो आप कहेगा पेट में दर्द हो रहा है, पेट की तरफ ऐसे पकड़ के इशारा कर रहा है, ऐसे ऐसे कह रहा है, ऐसे खिलाओ खिलाओ खिलाओ, ठीक है, और हाथ से जो है ना वो अपने मुंह की तरफ किए चला जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, ये जो खिलाओ का जो लफ्ज ने कहा ना, तो दूसरे बंदे ने सुन करके इस लफ्ज को इस एक्शन के साथ जोड़ दिया, ठीक है, कि जब ये खिलाओ का लफ्ज बोलेगा ना, जब यानी खिलाओ की आवाज आएगी ना मुझे, तो इस आवाज का मतलब ये है कि कुछ मुंह से अंदर पेट में डालने वाली चीज देनी है इसको, इसको जरूरत है इस चीज की। तो इस तरीके से जब वर्ड्स बनते हैं, ठीक है ना, ये जो साउंड्स हैं, साउंड्स ही है ना बेसिकली, आवाज आ रही है ना खाली, लेकिन ये साउंड्स जो है फिर वर्ड्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, और ये वर्ड्स फिर बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, पहले एक दर्जन वर्ड बन गए, फिर वो दो दर्जन हो गए, फिर वो फ्यू और डजन्स हो गए, फिर वो हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स बन गए। ये जो हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स बन गए, हर वर्ड का जो है वो कोई ना कोई मीनिंग है, कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, फिर इवेंचुअली जा करके ये एक पूरी लैंग्वेज बन जाती है। ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से लैंग्वेज बनती है ना, ये कोई आपको, मैं कोई वो ऐसी चीज नहीं बता रहा जो कि आपको पहले पता नहीं थी, ये चीज आप सबको पता है, और आप लोगों को हमसे भी ज्यादा पता है। क्यों? इसलिए कि आप लोग हैं अभी छोटे, हम लोग तो हो चुके हैं, किसी की 40 इयर्स एज है, किसी की 45 इयर्स एज है, किसी की 50 एज है ना, तो हमें तो बहुत अरसा हो गया लैंग्वेज सीखे हुए। आप लोगों ने तो अभी लैंग्वेज सीखी है, आप में से किसी ने 4 साल पहले लैंग्वेज सीखी है, ठीक है, किसी ने जो है वो 5 साल पहले लैंग्वेज सीखी है। आप जो उर्दू बोलते हैं, उर्दू समझते हैं, आपने किताब पढ़ करके उर्दू समझी है? नहीं ना, आपने अपने अम्मी के मुंह से, अपने अब्बू के मुंह से जो साउंड सुने, राइट, उन साउंड्स को आपने जो है वो पिक करना शुरू कर दिया, याद करना शुरू कर दिया, और ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जो साउंड अम्मी अपने मुंह से ऐसे करके निकालती है ना, इस साउंड का मतलब ये है कि ये वाला काम करना है, ठीक है, ये वाला काम करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले ही जो है वो ये पूरी की पूरी लैंग्वेज जो है ना जिसको उर्दू कहते हैं, इस लैंग्वेज को अपने दिमाग में स्टोर किया है। थोड़े दिन पहले की बात है आपको, ठीक है ना। ये बच्चा कब पिक करना शुरू करता है? अराउंड मेरे ख्याल में 2 years से लैंग्वेज उसके जहन के अंदर आनी शुरू हो जाती है, वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं 2.5 years 3 years में, ठीक है। तो इस तरह से लैंग्वेज जो है ना वो इंसान जो है वो खुद से बना रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम ये लैंग्वेज बनी थी वो फर्स्ट टाइम कैसे बनी थी? फर्स्ट टाइम जो है जब बड़े बड़े लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करना शुरू किया था ना, ठीक है, तो वो कैसे हुआ था? वो अल्लाह ताला ने इनके दिलों के अंदर ये बात डाली थी कि किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए तुम मुंह से ऐसी आवाज निकालो। ये उनके दिल के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ये बात आती थी। फरिश्ता एक होता है हमारे दिल के पास, ठीक है ना, एक फरिश्ता रहता है। वो फरिश्ता जो है ना ये जो आइडियाज है ना अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारे दिल में डालने होते हैं, वो फरिश्ता हमारे दिल में ये आइडियाज डालता है और उन आइडियाज की रिएक्शन में हम वो काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो लैंग्वेजेस दुनिया के अंदर बनी है ना, ये लैंग्वेजेस जो है ये सारी की सारी इंस्पायर्ड लैंग्वेजेस कहलाती है। ये अल्लाह ताला ने दिलों में लोगों के डाली है, फिर लोगों ने ऐसी ऐसी आवाजें निकालनी शुरू करी और उनका ये पूरा मीनिंग उन्होंने सेट कर लिया कि भाई इस आवाज का ये मतलब होता है, इस आवाज का ये मतलब होता है। इस तरह से वर्ड्स बन गए, इस तरह से पूरी पूरी लैंग्वेजेस बन गई। इंग्लिश लैंग्वेज भी अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में डाल करके बनवाई है, उर्दू लैंग्वेज भी अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में ये आइडियाज डाल करके बनवाई है, हिंदी लैंग्वेज भी, अफ्रीकी लैंग्वेज भी, हर लैंग्वेज इसी तरह से बनी है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो अरबों में लैंग्वेज बनवाई ना इस एरिए के अंदर, जिसको अरबी लैंग्वेज कहते हैं, ये अरबी लैंग्वेज जो है वो अल्लाह ताला ने एक स्पेशल किस्म की लैंग्वेज बनवाई है, ठीक है ना। ये लैंग्वेज जो है ना ये दूसरी दुनिया के लैंग्वेजेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा कहलाती है एग्जैक्ट लैंग्वेज। एग्जैक्ट लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इसके अंदर हर चीज के लिए एक अलग वर्ड है, हर कैफियत के लिए, हर सिचुएशन के लिए इसके अंदर एक खास वर्ड होता है कि जिस वर्ड के जरिए से ना आपको एग्जैक्टली बात समझ में आ जाए, ठीक है, कि बंदा बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है। बड़ी यानी ये जाहिर है छोटे बच्चे ज्यादा अच्छी आसानी से नहीं समझ सकेंगे, लेकिन ये इंतहाई एग्जैक्ट लैंग्वेज है। इसकी मिसाल के लिए बड़ी अच्छी चीज थी, इसी ने मुझे रिसेंटली भेजी भी थी, एक तो वो जो एग्जैक्टनेस है ना इस लैंग्वेज की, वो कैसे है कि जैसे लायन के लिए जो लफ्ज है ना वो है असद, ठीक है। लेकिन अब लायन जो होता है जिस वक्त अपने फैमिली के साथ होता है तो उस वक्त उसको असद नहीं कहते, उसके लिए एक डिफरेंट लफ्ज है, ठीक है। जिस वक्त लायन जो होता है वो यानी शेर, वो जब अटैक करने के लिए अपने शिकार को देख रहा होता है ना, उस वक्त उसके लिए एक डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जिस वक्त वो अपने शिकार के पीछे भाग रहा होता है, जैसे किसी डियर का, हिरन का पीछा कर रहा है, उस हालत को जो लायन की होती है ना उसको डिफाइन करने के लिए एक अलग वर्ड लायन के लिए इस्तेमाल करता है। फिर जब वो शिकार को पकड़ लेता है उस वक्त उस लायन के लिए एक अरब वर्ड है। तो जो सुनने वाला ये वर्ड सुनता है ना तो उसको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि जी कहने वाला जो है वो शेर की कौन सी वाली हालत को बयान कर रहा है, ठीक है। बहरहाल ये एग्जैक्टनेस है इस लैंग्वेज की जो कि अल्लाह ताला ने अपने लोगों के यानी इस एरिया में जो लोग रहते थे उनके दिल के अंदर ये सारी बातें डाली, तो ये एक ऐसी लैंग्वेज बन गई जो कि इंतहाई प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने अपने कुरान को इस लैंग्वेज के अंदर नाजिल किया और इस कुरान में अल्लाह ताला फिर बार बार हमें याद भी दिलाते हैं कि इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिया, कि हमने इस कुरान को अरबी जुबान के अंदर लैंग्वेज किया, लैंग्वेज में नाजिल किया, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम्हारी अकल में बात आ जाए, तुम समझ जाओ कि अल्लाह ताला कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आपस में बातें शुरू हो गई, तो गलत बात। आप किधर आ जाना, एक दिन वापस आ गया, ये लो क्या नाम है, फरहान। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि हर एक के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगी बात, लेकिन ये करके हमने आगे बढ़ना है। अच्छा, एक और बात कि जो लोग अरबी जुबान नहीं बोलते थे ना, उनको ये अरब लोग क्या कहते थे, किसी को पता क्या कहते थे? गूंगा कहते थे, उर्दू बोलते थे अरबी, अजमी। सही है, जो लोग अरबी नहीं जानते थे ना, उनको ये लोग कहते थे अजमी। अजमी का मतलब क्या होता था? अजमी का मतलब है गूंगा। गूंगा किसको कहते हैं? जो कि बात नहीं कर सकता, ठीक है, यानी जिसको बात करनी आती नहीं है, उसको गूंगा कहते हैं। हालांकि अरब के बाहर जो लोग रहते थे वो गूंगे तो नहीं थे सारे के सारे, उनको बात करनी आती थी, वो लोग एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन अरब ये कहते थे कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है ना, उसमें आप अच्छे से बात कर सकते हैं, अगले बंदे को बात समझा सकते हैं, बाकी जो लैंग्वेज है उनके अंदर तो अच्छे से बात ही नहीं कर सकते, वो तो अपना जो दिल के अंदर एक कोई ख्याल आ रहा है वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते अच्छी तरीके से लोगों को। तो ये लोग तो ना ऐसे हैं कि जैसे इनको बात करनी नहीं आती, ये लोग तो गूंगे हैं, ये लोग तो डम्ब लोग हैं। ठीक है, देखिए लफ्ज इंग्लिश के अंदर एक यूज होता है डम्ब, ठीक है, ये डम्ब का मतलब एक्चुअली क्या होता है? गूंगा। ठीक है ना, दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीक। लेकिन इस लफ्ज को एक और भी माने में इस्तेमाल किया जाता है। क्या मानिए डम्ब का? डम्ब का लफ्ज है वो किसी और माने में भी सवाल होता है ना, क्या? बेवकूफ। ठीक है, बेवकूफ की मीनिंग में भी सवाल होता है ना डम्ब। हालांकि डम्ब का मतलब क्या होता है? कि आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो बात नहीं कर सकता ना सही तरीके से, उसको लोग बेवकूफ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अरब्स है ना, ये सिर्फ अपनी लैंग्वेज के ऊपर इतना ज्यादा, यानी इनको इनको प्राउड था अपने लैंग्वेज के ऊपर कि दूसरे लोगों को कहते थे कि ये तो बेवकूफ लोग हैं, इनको तो बात ही करनी नहीं आती। ठीक है, इनकी लैंग्वेज ही इतनी अच्छी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ना अपने नबी अलैहिस्सलाम को उस जगह पर भेजा कि जहां के लोग अरबी जुबान में बात किया करते थे। ठीक है, इस अरबी जुबान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है। जब आप इंशाल्लाह अरबी ग्रामर पढ़ना शुरू करेंगे ना, आप में से जो भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं बाद में पढ़ेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि ये अरबी कैसी जबरदस्त लैंग्वेज है। ठीक है, जो लोग मैथ्स को समझते हैं ना, 2 + 2 = 4, इसको कहते हैं एग्जैक्टनेस। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी 2 + 2 = 5 बन जाए, ऐसा हो सकता है? कभी 2 + 2 = 3.5 बन जाए, ऐसा कभी हो सकता है? 2 + 2 तो एग्जैक्टली 4 ही होगा ना। बिल्कुल इसी तरीके से अरबी लैंग्वेज जो है ना, ये भी मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसमें एग्जैक्टनेस है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आदम अलैहिस्सलाम जिस जुबान को सीख करके आए थे ना, वो जन्नत से सीख करके आए थे। ठीक है, वो अल्लाह ताला ने उनको जन्नत नहीं सिखाई, वो हमें नहीं मालूम है। आदम अलैहिस्सलाम की जुबान एक्चुअली जन्नत में अरबी जुबान ही थी। ठीक है, जन्नत में जब वो थे ना तो अरबी जुबान ही थी, लेकिन जब वो इस दुनिया के अंदर गलती हो गई ना उनसे, जन्नत के अंदर उन्होंने फल खा लिया, तो इस दुनिया में आए ना, तो जन्नत की जो नेमतें उनके पास थी ना, आपको पता है कि वो नेमतें उनसे वापस ले ली गई थी। ठीक है ना, जन्नत में मजे मजे थे, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जहां जाना जैसे जहां जाना चाहो वहां चले जाओ। ठीक है, तो ये सारी नेमतें वापस ले ली ना, लेकिन एक और भी नेमत थी जो कि उनसे वापस ले ली गई। वो कौन सी नेमत थी? वो भी अरबी जुबान, वो अरबी जुबान की ही नेमत थी कि जन्नत में उनको अरबी जुबान मिली हुई थी, जब उनको जन्नत से बाहर निकाला गया अरबी जुबान भी उनसे वापस ले ली गई। ठीक है, उनको उन्होंने या तो अल्लाह ताला ने फिर और आइडियाज डालने शुरू किए, फिर उन्होंने बात करनी शुरू करी एक नई लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे किसी ने लिखा है कि आर ऑल लैंग्वेजेस डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक। नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते कि ऑल लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक, ये तो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है लिखा हुआ। ठीक है, आई रेड सम टाइम अगो दैट अरबिक there are about 300 different words for lion and more than 500 for camel. हाँ, ये भी हमने भी पढ़ा है कहीं पर। ठीक है कि सिर्फ लाइन की मुख्तलिफ शक्लों को, उसकी मुख्तलिफ एजेस को, कि इस एज में लाइन को ये कहते हैं और अभी जैसे बताया कि अटैक कर रहा होता है तो कुछ और कहते हैं, तो 300 different words हैं सिर्फ लाइन के बारे में, शेर के बारे में। और सिर्फ कैमल के बारे में 500 डिफरेंट वर्ड्स हैं, उनमें से चंद हमें पता है, जमल और नाका और इबिल, राइट, अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत, कुरान में इबिल का भी लफ्ज आया है, सही है। तो कैमल के लिए टोटल वर्ड्स 500 हैं अरबी जुबान के अंदर। What is the first language that was spoken by Adam alaihissalam? So, ये तो भी कवर हो गया। तो उस लैंग्वेज का कोई नाम हमें नहीं पता कि वो लैंग्वेज कौन सी थी, लेकिन हमें इतना पता है कि जन्नत में जो थी वो अरबिक लैंग्वेज थी उनको, उनके पास। ठीक है, तो ये हो गया अरबी जुबान के बारे में। अच्छा, अब उसके बाद हम आपको एक और पॉइंट बताएंगे कि अरब के अंदर जो लोग रहते थे ना, ठीक है, इस पूरे जजीरा नुमा पेनिनसुला अरब के अंदर, तो ये जो लोग थे ये तीन तरह के लोग थे, थ्री टाइप्स ऑफ अरब्स। आप कुछ बता रहे सर, बताए अरबे आरबा, अरबे मुस्तारबा और अरबे बायदा। जी, सुरियानी लैंग्वेज जो आपने लिखा है ना, तो सुरियानी लैंग्वेज आदम अलैहिस्सलाम से तो रिलेटेड नहीं है, वो बहुत बाद की लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे प्रॉफिट्स के जमाने की बात है। एनीवे, आई एम नॉट श्योर कि ये आदम अलैहिस्सलाम कभी सुरियानी से ताल्लुक था कि नहीं था, ठीक है। हाँ, तो जो अरब थे, जो इस जगह पर जो अरब रहते हैं ना, वो एक्चुअली तीन तरह के अरब हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वो कहलाता है अरब बायदा। बायदा अरब कौन है, ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं अरब बायदा वो अरब हैं जो कि हलाक हो गए, पेरिश्ड, पेरिश नेशंस। ये कौन है, जैसे कि कौम आद, आद जो थे ना ये इधर इधर ही पेनिनसुला में ही रहते थे, ठीक है। कौम समूद जिनके पास हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए थे वो भी यहीं पर रहते थे, ठीक है, और यमन के अंदर भी इस तरह की जो कुछ कुछ कौमें थी जो कि तबाह हो गई। तो ये जो अरब से जो कि बिल्कुल खत्म हो गए, जिनका कोई भी नहीं बचा इनमें से, ठीक है, तो उनको अरब बायदा कहते हैं, ठीक है, द पेरिश्ड अरब्स, ओके। दूसरा अरब जो टाइप है अरबों की वो कहलाती है अरब आरबा। अरब आरबा ये एक खास एक बंदा था जिसका लास्ट नेम बनता था कहफान, कहफान, ठीक है। तो इसके जो चिल्ड्रन थे ना ये वो लोग हैं अरब आरबा, कहफानी अरब भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये दो किस्म के अरब हैं, इनको एक्चुअली क्या कहा जाता है, ये हैं एक्चुअली प्योर अरब्स, ठीक है। प्योर अरब्स किस तरह से बने, ये क्या मतलब प्योर अरब्स, नहीं, अरब आरबा जो थे ना वो तो, अच्छा अरब आरबा तो अलग चीज, उसके बारे में भी हमने बात भी नहीं करी है, ठीक है। तो अरब आरबा इनको प्योर अरब्स क्यों कहते हैं, कोई बताएगा प्योर अरब्स का क्या मतलब, उन्होंने बचपन से अरबी सीखी थी। अच्छा, कौम लूत, नहीं कौम लूत यहां नहीं रहती थी, कौम लूत तो शाम में रहती, ठीक है। प्योर अरब्स को, ये आपकी क्लास के दौरान ही मेरे जहन में भी बात आई, पहले मैंने भी इस बारे में सोचा, दे नो अरबिक एंड दे आर फ्रॉम द लैंड ऑफ अरेबिया, दे डिड नॉट डू हिजरत, दे केम फ्रॉम द लीनिएज ऑफ सबा, माशाल्लाह, दे स्पीक द ओरिजिनल अरबिक लैंग्वेज, सो दे केम फ्रॉम द लीनिएज ऑफ सबा और दे speak the original Arabic language, they descended from the tribe of Jurhum. अच्छा, प्योर से मेरी मुराद ये थी कि ये लोग जो है वो शुरू से अरब में ही रहे, जैसे कि इन्होंने लिखा ना कि इन्होंने हिजरत नहीं करी, ये ऐसा नहीं है कि ये इंडिया से इधर मूव हुए हो या अफ्रीका से इधर मूव हुए हो या ये सीरिया से इधर मूव हुए हो, ठीक है ना, नहीं, बल्कि ये हमेशा यहीं पर रहे। अब हमेशा का क्या मतलब है, हमेशा का मतलब क्या कि सबसे पहले कौन आया था, आदम अलैहिस्सलाम आया था, ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम की वो वाली औलाद जो कि यहां से बाहर नहीं गई, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में किताबों में लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने उनको उतारा था ना जन्नत से इस दुनिया में, तो वो थे ना, एक आदम थी और एक हव्वा थी उनकी बीवी, तो तो आदम को किधर उतारा था अलैहिस्सलाम को, लिखा हुआ है किताबों में, वी नॉट एब्सोल्युटली श्योर, लेकिन उनको किधर उतारा था, श्रीलंका में लिखा हुआ है, इंडिया पता नहीं, लेकिन श्रीलंका इंडिया से थोड़ा सा नीचे ही है, ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में, एक पहाड़ आज भी मशहूर है कि जहां पे आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था, और हव्वा को किधर उतारा था, नहीं, हव्वा को उतारा था अफ्रीका में, ठीक है, जो कि बिल्कुल वेस्ट में है, श्रीलंका ईस्ट में है, जद्दा वो और अफ्रीका वेस्ट में है, ठीक है। अब ये लोग बहुत दूर थे एक दूसरे से, तो किताबों में लिखा हुआ है कि एक तो इनके ऊपर पहला गम ये था कि जन्नत से इनको उतार दिया, जन्नत की नेमतें खत्म होंगी, ठीक है। दूसरा गम ये था कि ये दोनों साथ रहते थे, ऑब्वियसली दे लव्ड ईच अदर बिकॉज़ दे वर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। अब ये अलग वो अलग, बिल्कुल तन्हा, उस वक्त दुनिया के अंदर कोई भी दूसरा इंसान था ही नहीं। तो इन्होंने ना बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत इन्होंने ना अल्लाह ताला से दुआएं करी, पहले तो माफी भी मांगी थी आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर दुआएं करी, तो फिर अल्लाह ताला ने ना इनके जहन में वही इंस्पिरेशन आइडिया डाला कि तुम चलना शुरू करो, चलो तलाश करो अपनी बीवी को, इनके जहन में डाला कि तुम अपने शौहर को तलाश करो। तो अब ये जो तलाश करने के लिए चलना शुरू हुए ना, तो किसी तरीके से वो इधर चलना शुरू हुए, ये इधर चलना शुरू हुई, ठीक है। और सेंटर में कहीं से होते हुलाते जो है ना, बिलाखिर ये पहुंचे, कहाँ पे पहुंचे, ये मुलाकात इनकी किधर हुई आपस में जाकर के, ये जद्दा में जाकर के मुलाकात, या मक्का मुकरमा में जाकर के मुलाकात हुई। एनीवे दोनों चीजें बहुत, दोनों जगह बहुत ही करीब करीब है। हाँ, जद्दा का हमें इतना पता है, किताबों में लिखा है कि हव्वा का इंतकाल जद्दा में हुआ, उनकी डेथ जद्दा में हुई, वहां पर एक जगह उनकी कब्र के नाम से भी मशहूर है, ठीक है ना। और उसको जद्दा कहते भी इसी वजह से हैं क्योंकि जद्दा मीन्स दादी, और ये हमारी असल दादी जो है वो महवा थी, ठीक है। बहरहाल ये इवेंचुअली यहाँ पे पहुंचे, जब यहाँ पे पहुंचे तो इनकी जो औलाद हुई तो वो इसी एरिया के अंदर हुई होगी ना, ठीक है। तो अब इनकी औलादें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जगहों पर मूव भी हो गई होंगी, लेकिन उनकी कोई औलाद जो है वो यहीं रही होगी और कहीं और मूव नहीं हुई। तो जो यहीं पर रही तो वो जो है ना फिर अरब आरबा बने, प्योर अरब्स, ठीक है। अच्छा, ये तो दूसरी किस्म हो गई। पहली किस्म कौन सी हो गई, अरब बाइदा जो कि डिस्ट्रॉय हो गए, दूसरी किस्म अरब आरबा जो कि यहीं पर हमेशा हमेशा रहे थे, कहीं और बाहर नहीं गए, तीसरी किस्म है अरब मुस्तअरबा, मुस्तअरबा, अच्छा मुस्तअरबा जो है ये इसका मतलब क्या है कि दोस पीपल हु बिकेम अरब्स, ठीक है ना, इनको आप नेचुरलाइज्ड अरब्स भी कह सकते हैं, इनको आप अरबाइज्ड अरब्स भी कह सकते हैं, यानी ये लोग पहले अरब्स नहीं थे, ये लोग कहां से आए थे, ये बाहर से आए थे, मुल्के शाम में से आए थे, ठीक है। तो आप लोगों के अलावा, आप लोग पढ़ के आए हैं हमें पता लग गया है, ठीक है, लेकिन आपके अलावा अगर कोई बताए कि ये कहां से आए थे और ये कौन आए थे बाहर से, अरबाइज्ड अरब्स, ये आए किधर से, कौन आए, सबा से, नहीं सबा तो अरब का हिस्सा ही है, यमन अरब का हिस्सा ही है, यमन इस पार्ट ऑफ अरब, ये अरब के बाहर से आए, बाहर कौन सा है, कौन सी जगह है जहां से ये आए थे, शाम से आए थे, ठीक है। कौन आए थे आपको पता है ये बात, बस इस वक्त याद नहीं आ रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे भाई, है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओरिजिनली कहाँ के, ओरिजिनली अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा किधर किया, कौन से एरिया में पैदा किया,
शाम,
जन्नत में, अरबी जुबान खत्म हो गई, दोबारा कहां से आई, हाँ दोबारा जो लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इस एरिया में रहती थी ना, अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये वर्ड्स दोबारा से डालने शुरू कर दिए, ठीक है, कि खाने के लिए अकल का लफ्ज, अकल का साउंड इस्तेमाल करो, अकला, उसने खाया, ठीक है। और इसी तरीके से हर चीज के लिए जो साउंड्स अल्लाह ताला ने इनके दिलों में डाले वो दोबारा से पैदा शुरू करने शुरू कर दिए ना, तो फिर से ये दुबान जो है वो लोगों के दरमियान बन गई। लेकिन वो कौन से लोग थे, जो इस एरिया में रहते थे, इस अरब के एरिया में रहते थे, उनके दिल में फिर से ये अरबी जुबान जो है अल्लाह ताला ने बना दी। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो बेबीलोन के इलाके में रहते थे जो कि इराक में था, ठीक है ना, मतलब बेसिकली इराक के में पैदा हुए थे, सही है। जब इराक में उनको लोगों ने बहुत तंग किया और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, कोई मुसलमान नहीं हुआ उनकी बात के ऊपर, ठीक है ना। वो नमरूद ने उनको बल्कि आग में फेंकने की भी कोशिश करी, پھر وہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا, وہ بچ گئے اس میں سے. ٹھیک ہے, تو جب آگ میں پھینکنے والا واقعہ ہوا نا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وائف جو کہ ٹھہر جائے آپ سے تو پوچھا جائے گا تب وہ ایسے نہیں, ٹھیک ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کی وائف کون تھی؟ نہیں, سارا, ان کی وائف تھی سارا, ٹھیک ہے, جو کہ ان کی ایک کزن تھی ابراہیم علیہ السلام, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی کزن سارا کو لیا کیونکہ سارا بھی مسلمان ہو گئی تھی, اور اپنے ایک نیفیو کو لیا اپنے بھائی کے بیٹے جن کا نام کیا تھا لوط علیہ السلام, ٹھیک ہے, تو لوط علیہ السلام اور اپنی بیوی سارا کو لیا اور انہوں نے عراق سے مائگریٹ کیا, ہجرت کری کس طرف؟ فلسطین کی طرف, ٹھیک ہے, وہ فلسطین میں جا کر کے رہنا شروع ہو گئے, پھر فلسطین سے وہ اور آگے انہوں نے ٹریول کیا, وہ گئے مصر میں, ایجپٹ میں گئے, ٹھیک ہے, ایجپٹ کے اندر جا کر کے ان کے ساتھ وہ والا واقعہ پیش آیا کہ ایجپٹ کا ایک اس زمانے میں ایک کنگ ہوتا تھا فرعون, ایجپٹ کے کنگز کا نام کا ٹائٹل جو تھا وہ فرعون تھا, نام تو ڈفرینٹ ہوتا تھا لیکن ٹائٹل ان کا فیرو ہوتا تھا فرعون, ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ایجپٹ کا فرعون تھا نا, تو وہ کیا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی عورت اس کے ملک میں انٹر ہوتی تھی نا باہر سے, تو وہ اس عورت کو جو ہے نا وہ اپنی سلیو بنا لیتا تھا, پکڑ لیتا تھا اس عورت کو اور اپنے پاس رکھ لیتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ کوئی اور خیر, لیکن وہ کسی ایسی عورت کو نہیں اپنا سلیو بناتا تھا کہ جس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ہو, عجیب بس اس کا ایک ایک, ایک تھا سٹائل, ایک جس عورت کی کا بھائی ہوگا اس کو اپنا سلیو نہیں بنائے گا, جس عورت کا بھائی نہیں ہوگا اس کو اپنا سلیو بنا لے گا, ٹھیک ہے, تو جب ابراہیم علیہ السلام کا اس کو پتا چلا نا کہ بھائی ایک کپل آیا ہے, ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے, یہ ہمارے کنٹری میں آئے ہیں, تو اس نے نا ان کو اپنے اپنے سولجرز بھجوا کر کے ان دونوں کو پکڑ کر کے اپنے پاس بلا لیا, ٹھیک ہے, اس نے کوشش کری کہ سارا جو رضی اللہ تعالی عنہا تھی ان کو پکڑ کر کے نا اپنے پاس سلیو بنائے, لیکن وہ جب بھی یہ کوشش کرتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتے تھے کہ اس کی باڈی جو ہے نا وہ کام کرنی چھوڑ دے دیتی, اس کے اوپر جیسے پیرالیسس کا اٹیک ہو جاتا تھا, وہ کچھ کر نہیں پاتا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ لگتا ہے کہ نا میں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ سارا کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ ہوا ہے, تو وہ معافی مانگنا شروع ہو گیا, جب اس نے معافی مانگی تو سارا رضی اللہ عنہا نے اس کو معاف کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن اس نے معافی کیسے مانگی تھی کہ میں اب دوبارہ نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں, میں دوبارہ نہیں کروں گا, تو سارا رضی اللہ عنہا نے اس کو معاف کر دیا, نیک عورت تھی وہ بہت, ٹھیک ہے, جب معاف کر دیا تو یہ پھر ٹھیک ہو گیا, پھر اس نے کوشش کری سارا رضی اللہ عنہا کو پکڑنے کی, پھر اس کے اوپر اسی طریقے سے پیرالیسس کا اٹیک ہو گیا, فالج گر گیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے, اور یہ پھر کچھ نہیں کر سکتا تھا, تو پھر اس نے معافی مانگنی شروع کر دی, تو سارا جتانا نے پھر اس کو معاف کر دیا, پھر اس نے دوبارہ سے کوشش کرنی شروع کر دی ان کو پکڑنے کی, ٹھیک ہے, پھر یہ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہو گیا کہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا, کچھ ہو گیا اس کو, ٹھیک ہے, پھر اس نے معافی مانگی تو سارا جتانا نے پھر اس کو معاف کر دیا تیسری مرتبہ, اب تیسری مرتبہ جب اس کو معاف کیا نا تو پھر اس نے توبہ کری کہ اب میں نہیں کروں گا بھائی بہت ہو گیا, اس کو یقین ہو گیا کہ یہ جو سارا رضی اللہ عنہا ہے نا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی اسپیشل بندی ہے, تو ان کے ساتھ جو میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ پھر مجھے سزا دے رہے ہیں, تو اب نا یہ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی بیٹی جس کا نام تھا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اس فرعون کی بیٹی تھی, اس نے اپنی بیٹی کو سارا رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا کہ آپ میری بیٹی کو لے جائیں اپنے ساتھ اور جو چاہے بس آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, ایسا ہوتا ہے ایون آج بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر ان کو پتا چلتا ہے نا کہ کوئی بہت ہی نیک بندہ ہے, کوئی بہت ہی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے, تو ایون اپنے بچوں میں سے کسی کو اس کو دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس کی تربیت کریں, یہ آپ ہی کے پاس رہے گی یا آپ ہی کے پاس رہے گا, ایون بیٹوں کو بھی دے دیتے ہیں, کبھی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس فرعون نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا کہ آپ بس اس کو اپنے پاس رکھیں, ٹھیک ہے, اب وہاں سے مصر سے نا ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین آئے, اب ان کے ساتھ کون کون لوگ تھے, ایک تو لوط علیہ السلام ہوں گے شاید ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ نہیں لوط علیہ السلام ان کے ساتھ اب نہیں تھے, کیونکہ لوط علیہ السلام جب عراق سے فلسطین کی طرف آئے تھے نا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ایک جگہ پر ٹھہر گئے تھے, جس بستی میں وہ ٹھہرے تھے تو وہی بستی جو تھی نا پھر وہ وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا, ان لوگوں نے بات نہیں مانا, پھر ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, जो कि फिर तबाह हो गई वो बस्ती। खैर लूत अलैहिस्सलाम वहीं पे ठहर गए, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा रेतरान जो है ये दोनों आए थे मिस्र, लेकिन अब यहां से जब ये वापस गए तो इनके साथ फिर हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी साथ थी इनके, ठीक है। तो हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो और सारा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है ये दोनों जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ वापस फलस्तीन आए, ठीक है। अब यहां पर आकर के वो वाकया पेश आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से खूब दुआएं करी कि ऐ अल्लाह मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई बेटी, मेरी कोई औलाद ही नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे औलाद दे दें, कोई बच्चा दे दें मुझे, ठीक है, मतलब मुझे औलाद दे दें। तो अल्लाह ताला ने ना उस वक्त इनकी दुआ को कबूल कर लिया और इनको अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया, ठीक है ना, इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन ये बेटा किसके यहाँ पैदा हुआ, क्योंकि हाजर हजरत आनंद से भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर शादी कर ली, तो ये दूसरी वाइफ बन गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। पहली वाइफ कौन थी, सारा रज़ी अल्लाह अन्हा, दूसरी वाइफ थी हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है जी मुस्तफा। हाँ, तो अब ये जो बेटे पैदा हुए ना इनके, इनका नाम था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल, ठीक है। पूछा है आपसे, आपसे पूछा है, नहीं पूछा है ना, खामोश, ठीक है, डिसिप्लिन, सही है, क्लास के अंदर डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ओके। अच्छा, तो इनके जो बेटे थे वो थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, सही है। अब ये बेटे पैदा हो गए, लेकिन ये बेटे कौन सी बीवी से पैदा हुए, हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से। सारा रज़ी अल्लाह अन्हा की अभी भी कोई औलाद नहीं थी, ठीक है। तो उस वक्त फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया, वो हुक्म ये था कि तुम अपनी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को लेकर के ना फलस्तीन से ट्रैवल करो, वहां से सफर करो, और वो ऑल द वे अप टू मक्का मुकर्रमा, मक्का मुकर्रमा आओ और यहां पर इन दोनों को छोड़ करके वापस चले जाओ फलस्तीन, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला का हर हुक्म मानते थे, नबी भी थे और बहुत ही बड़े नबी थे, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इस हुक्म को माना और अपनी बीवी हाजरा और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए और यहाँ पे इस जगह पे पहुंचे जहां पर के काबा मौजूद था। काबा क्या था, काबा मीन्स, किसी को काबा का मतलब पता हो तो आप बता सकते हैं, वो तो सबको पता है, काबा का क्या मतलब है आप बताना चाहेंगे, खैर काबा का मतलब इज़ा कुमतुम इला सलाते فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, كعبين دو کعبوں تک تم اپنے پیر کو دھو, آپ کے پیر میں کعبہ لگا ہوئے, ہر انسان کے پیر میں کعبے لگے ہوئے, کہ جہاں تک پیر کو دھو جب وضو کر رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیروں کو کعبہ تک دھو, کیا مطلب, हमारे पैर के अंदर जो उभरी हुई हड्डी है, एक ऊंची सी एक हड्डी होती है, उसको काबा कहते हैं, काब, काबा नहीं कहते, काब कहते हैं। तो काब का मतलब होता है एक ऊंची चीज, उभरी हुई चीज, ठीक है। तो काबा जहां पे है ना, तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली एक उभरी हुई जगह है जमीन के ऊपर, ऐसी ऊंची सी एक जगह है, ठीक है। इसी जगह के ऊपर ये बिल्डिंग बना दी गई है खाली, This building is not Kaaba. ये इमारत काबा नहीं है, ठीक है, बल्कि वो जगह जो है ना वो है काबा, ठीक है। तो काबतुल्ला ऐसी एक जगह है जिसको कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर बिल्कुल जब दुनिया बनाई थी तो उस वक्त ये काबा बन चुका था, ये जगह बन चुकी थी, ठीक है। तो इस जगह पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे के साथ आए और यहां पर उन्होंने इनको छोड़ा, इनके पास थोड़ा खाने पीने की चीजें वगैरह थी वो इनको दी और वहां पे छोड़ करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। और फिर वो सारा वाकया पेश आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे थे, इनसे कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं कहा इनको, ठीक है ना, बहुत जाहिर है दिल के अंदर बहुत गम होगा कि अपने बेटे को, जो कि इतने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त होगी अराउंड 80+ जब उनका ये बेटा पैदा हुआ, या इफ आई एम मिस्टेकन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त जो थे वो कितने थे, 98 इयर्स के थे, 98 इयर्स जब ये पैदा हुए थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है, या خیر 80 کے قریب تھے یا 98 ایئرس کے تھے, وہ اسحاق علیہ السلام غالبا 98 ایئر میں پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام. اینی وے اتنے سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا بیٹا دیا, ٹھیک ہے, تو اللہ کا حکم تھا چھوڑ کے آ جاؤ, تو خاموش تھے, جا رہے تھے, تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے بھی, حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پیچھے بھی آئیں اور فرمایا کہ آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, کوئی جواب نہیں دیا, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کوئی جواب نہیں دیا. پھر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی میرے شوہر جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے, یقیناً اللہ نے ان کو حکم دیا ہوگا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے چھوڑ کے جانے کا, تو انہوں نے سر ہلا دیا ایسے, ہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو پھر وہ بھی بے فکر ہو گئے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا نا تو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی, اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ضائع نہیں ہونے دیں گے. پھر اس کے بعد ساری کی ساری وہ اسٹوری چلتی ہے کہ زمزم پھر نکلا, پھر یہ سب کچھ ہوا, ٹھیک ہے, تو وہ ہم ان شاء اللہ کے ٹرمس کے اندر ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. جب آدم علیہ السلام بلڈ دا کعبہ فرسٹ, ہاں جو بلڈنگ تھی کعبہ کی وہ ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنائی تھی, لیکن وہ بلڈنگ بعد میں ٹوٹ گئی تھی, ٹھیک ہے, طوفان نوح میں ٹوٹ گئی تھی یا کوئی اور طوفان آیا تو بلڈنگ ٹوٹ گئی. جی تو اب جو ہے فقہ کی کلاس لڑکوں کی شروع ہوگی.